الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. میرے دوستو، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج کے سبق میں امام نبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اس کی مثال یوں سمجھے، شادی کے موقع پر، نکاح کے بعد یا نکاح سے پہلے دلہن کو زیورات سے، خوشبو سے سجائی جاتی ہے. اب اس کو زیورات پہنائے جاتے ہیں اور وہ سمجھتی ہے کہ بدن کے جس عضو پر جس میں نے جتنے زیورات پہنے ہیں وہ خوبصورت ہو گئے. انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال لی، انگلیاں خوبصورت نظر آنے لگی. کلائی میں چوڑیاں بینگلز پہن لیے، وہ بھی خوبصورت نظر آنے لگے. کانوں میں بالیاں ڈال دی تو کان بھی خوبصورت نظر آنے لگے. آنکھوں میں سرما ڈال دیا، کاجل ڈال دی، آنکھیں خوبصورت لگنے لگی. چونکہ یہ عورتوں کا مجمع ہے تو مثال بھی بہت اچھی ذہن میں آئی ہے. اسی طرح مومن اپنے جسم کو، جس عضو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجاتا ہے تو وہ عضو بھی اللہ کے یہاں خوبصورت نظر آ جاتا ہے، بہت خوبصورت. چہرہ ہو، چاہے ہاتھ ہو، چاہے بال ہو، چاہے پیر ہو، کوئی بھی ہو. شادی کے موقع پر لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ جی فلاں بیوٹی پارلر پر لے جاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، دلہن کو وہاں سے اس کو کیا سجاؤ، اور اسی طرح اس طرح، تاکہ پہلی نظر میں خاوند کو پسند آ جائے. میری بات نہیں سمجھے، پہلی نظر میں خاوند کو یہ لڑکی بھا جائے، اتنی سجاؤ اتنی. تو اس کے لیے بیوٹی پارلر بھی اچھی تلاش کی جاتی ہے. اللہ کے نیک بندو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اتنی سجاؤ، اتنی سجاؤ کہ جیسے ہی تم قبر میں سوو فوراً ہی من ربک سے فرشتے پہچان لے کہ یہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دنیا کے لیے تم سجاتے ہیں تاکہ دوسرے کو بھا جائیں، دوسرے کو کیا ہے پسند آ جائے، لیکن کبھی اللہ کو پسند آ جائے، اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی کی اتباع کرو مجھے بھا جاؤ گے، مجھے پسند آ جاؤ گے. قل، او میرے نبی آپ ہی بتلا دو آپ کی امت کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پسند کرے، اللہ کو تم بھا جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تم سے پیار کرے، تو ایک کام کر لو، فتبعونی، میرے تمہارے پورے بدن کو، تمہاری زندگی کے ہر کام کو میرے نبی کی سنت سے سجا لو. سب سے اچھا یہ بیوٹی پارلر ہے. इससे बढ़कर कोई नहीं, वो क्या है? सुन्नत है। बहुत आसान है। जूते पहनने में कौन सी सुन्नत सीखना चाहिए? अब तो छोटी छोटी किताबें हैं सुन्नतों पर। समझ में आई बात? मुंह धोने में, चेहरा धोने में, वुजू करने में, हाथ धोने में क्या सुन्नत है? पैर धोने में क्या सुन्नत है? गुसल करने में क्या सुन्नत है? बाथरूम जाने में क्या सुन्नत है? खाने में क्या सुन्नत है? आप करते चले जाओगे तो दुनिया की ब्यूटी पार्लर तो दुनिया ही में रहेगी, लेकिन जो होगा उसकी दुनिया भी बन जाएगी, कब्र भी बन जाएगी। और ऐसा बताया जाएगा, मन हाजर रजुल, कौन है बताओ ये आदमी? ये आदमी कौन है? ये कौन पूछेगा? फरिश्ते कब्र में, मन रब्बू का मदीनू का मन हाजर रजुल, ये बताओ। उसकी कब्र से लेकर मदीना मुनव्वरा तक खोल के बताया जाएगा, बताओ ये कौन है। वहां वैसा कहेंगे, यार अभी तो कोई भी मुझे पूरी तरह नबी कौन है, रसूल है, बता देते हैं। प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, हम बतला देते, कब्र में भी बतला देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह दुनिया में आप ए लेवल, जीसीएसई या फिर कॉलेज के अंदर मेहनत की है तो वहां सवाल का जवाब देना आसान हो जाता है, वरना पूरा साल आपने कॉलेज कर ली है लेकिन मेहनत ही नहीं की है तो वहां आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आपने सुन्नत पर अमल किया है तो मन हाजर रजुल का जवाब ऑटोमेटिकली तुम्हारी जबान पर अल्लाह पैदा कर देगा। और अगर नहीं की है दुनिया में सुन्नत की प्रैक्टिस, तो याद रखो मेरी माए और बहने, कब्र में जबान गूंगी हो जाएगी। हा, ऐसा तो ना मैं भी कह दो ये मेरा नबी है, ऐसे तो हजार लोग कहते हैं, काम उनके देखो। नबी के खिलाफ है, अगर वो भी कह देंगे तो फर्क क्या हुआ उन लोगों के दरमियान जो सुन्नत पर चलते हैं, उन लोगों के दरमियान जो नहीं चलते, फर्क क्या हुआ? अल्लाह ने ये तीन सवाल इसीलिए रखा है। और बाज बुखारी, मैंने पहले भी कहा था, उसमें तो मर रब्बू का भी जिक्र नहीं बुखारी में, तो वहां दीनू का भी नहीं। रजुल से ही पहचाना जाएगा कि ये सुन्नत की पैरवी करके आया है नहीं, नबी के तरीके पर चलकर। उसी एक सवाल पर ये पास हो जाएगा, अगर किया है तो। वो मेरी बात नहीं समझे? इसलिए जैसे हमारे यहां इमाम होता है, बाकी सब मुक्तदी होते हैं। इमाम क़याम करे, मुक्तदी भी क़याम करे। इमाम समी अल्लाह कहे, समी अल्लाह। रुकू करे, समी अल्लाह। जैसे इमाम करे, इमाम अत्तहियात में बैठे, जो पीछे बैठने वाले सब के सब, आप कहीं भी चले जाओ, बा जमात नमाज चाहे हरम में चले जाओ, मस्जिद नबवी में चले जाओ, सब जगह। अगर इमाम रुकू कर रहा और मुक्तदी सीधा सजदे में चला जाए तो क्या होगा? मेरी बात सुन में आई कि नहीं आई? तो उसकी नमाजी नहीं होगी, वो तो हजरत खुद इमाम बन गया। सुनना ही बात, इमाम से आगे निकल गया। इमाम की इक्तदा जरूरी है तेरी नमाज की कामयाबी के लिए। और उसमें मजे की बात भी है, अक्सर अरकान में तकबीर होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, समी अल्लाह। तो अल्लाह अकबर कहता है, अगर इमाम अल्लाह अकबर कहकर रुकू में चला गया, अल्लाह अकबर कहकर सज्दे में चला गया, समझ मेरी बात, फिर अल्लाह अकबर कहकर बैठ गया, दोबारा सज्दे में चला गया और तैयार में बैठ गया, तो एक ही लफ्ज या देखिए अल्लाह अकबर। लेकिन मुक्तदी को पहचान हो जाती है कि हजरत साहब ने क्या किया, अल्लाह अकबर से रुकू किया, अल्लाह अकबर से सज्दा किया, अल्लाह अकबर से सज्दे के दरमियान बैठा। ये मुक्तदी को इमाम के अल्लाह, हालांकि मुक्तदी लोग तो नहीं बोल रहे हैं, समझ में आई बात, इमाम बोल रहा है, इमाम के अल्लाह अकबर से इंसान को पीछे पता चल जाता है, मालूम हुआ नमाज में सिर्फ इमाम की इक्तदा ही नहीं करनी होती, इमाम के मंशा को भी पहचानना होता है कि ये किधर गया। अल्लाह अकबर तो रुकू का भी कहा उसने, अल्लाह अकबर तो सज्दे का भी कहा, अल्लाह अकबर तो तहबे, लेकिन वो पीछे वाला पहचानेगा, खाली अल्लाह अकबर को फॉलो करेगा तो पहले सज्दे में चले जाएगा, अल्लाह अकबर खाली सज्दे में जाओ। उसने पहचाना नहीं ईमान के मंशा को कि इमाम कौन सा अल्लाह अकबर कह रहा है, रुकू का कह रहा है, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے امام ہے. ہماری میری اور آپ کی اور کائنات کی پوری زندگی کے امام ہے, صرف نماز کے نہیں ہر ہر ارکان کے. ہماری زندگی ایک نماز کی طرح ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام ہے. ہم سب دنیا والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں. جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا اسی طریقے پر ہم کو کرنا پڑے گا, تو پھر ہماری زندگی کی نماز صحیح ہوگی. زندگی کی نماز خالی ایک نماز نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, رکو میں چلے گئے, پھر جلدی سجدہ کیا, پھر بیٹھ گئے, پھر جلدی سجدہ, پھر بیٹھ گئے, جلدی جلدی جلدی. صحابی ہے, صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی, نماز السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ, ملاقات کرنے آگے, فرمایا وعلیکم السلام, جو نماز دوہراؤ, پھر دوبارہ جاؤ, جو نماز پڑھی پھر اللہ اکبر وہی پڑھی, فاسٹ فاسٹ, اپ اینڈ ڈاؤن والی, قسط کراؤ, فرنٹ ٹو ٹاؤن والی, اور آن ٹو بھجیے پکوڑے سموسے یا پاؤن جو بھی ہو. سمجھ رہی بات, آج کل ایسے ہی کرتے ہیں, وہ بیٹھی رہتی ہے میری مائیں اور بہنیں, بیٹھی رہتی ہے بیٹھی رہتی ہے بیٹھی رہتی ہے, اب یہ پکانا یہ پکانا یہ پکانا یہ پکانا, 10 منٹ باقی ہے, جلدی جلدی وضو کیا, اپ اینڈ ڈاؤن, کس دی گراؤنڈ, رن ٹو ٹاؤن والی نماز شروع کر دی. نہ ذکر اللہ ہے, نہ فکر اللہ ہے, نہ کوئی کنسنٹریشن ہے نماز میں, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے, بس وہی نماز جل, کیونکہ بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو مرغے والی نماز کہی. بعض چیزیں ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے. وہ مرغا دیکھا ہے آپ نے, مرغی اور دانے ڈالو تو کیا کرتے, اس طرح تھوڑا ایسا ڈالا, کھا لیا, ایک کھا لیا, ایک ساتھ سارے نہیں کھاتے, ایسا کھایا پھر اٹھایا, ایسا کھایا پھر اٹھایا. فرمایا مرغوں والی نماز مت پڑھو. یہ مرغوں والی نماز ہے, ککڑے کک والی. اب وہ ککڑے کک میں کیا ہوگا, اس کو ذبح کرنا پڑے گا, اسے خود نہیں ملے گا. ہاں, اس لیے ٹائم شروع ہو جائے پہلے نماز, پہلے نماز. ہاں, دو کام سامنے آ جائیں, میں نے کل ہی بخاری شریف میں ان کو سنایا, دیکھو ایک دنیا کا کام ہے اور ایک اللہ کا کام ہے. اگر کوئی یوں کہے مجھے تو اپنے ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے شوہر سے بڑی محبت ہے اور اللہ کی اتنی میرے دل میں نہیں ہے, ایسے انسان پریکٹیکلی یہ دیکھتا ہے کہ میرے دل میں تو ماں باپ کی زیادہ ہے. سمجھ میں آئی بات, لیکن اللہ کی اتنی نہیں ہے, تو وہ تو اس وقت تب پہچانی جائے گی جب تمہارے سامنے دونوں کام سامنے آ جائیں, نماز کا وقت بھی آ گیا. اگر میں دیکھو, بچوں سے محبت کس کو نہیں ہوتی ہے, بہت ہے, اللہ سے بھی زیادہ بچے کو پیار کرتے ہیں, اتنا قرآن سے نہیں کرتے. اب بچے نے تمہارے سامنے قرآن اٹھایا, نیچے ڈالا اور اس کے اوپر پیر رکھا, تو اس وقت پتا چلے گا کہ ماں کے دل میں کس کی محبت ہے, بچے کی ہے یا قرآن کی. اٹھا گئے تماشا مار دیا, کیا کر رہے تھے قرآن پر, اب پتا چلا اس کے دل میں قرآن کی وجہ اللہ کی محبت ہے, اللہ کی محبت ہے. اگر کچھ نہ کہتی تو سمجھ میں آتا دنیا کی محبت ہے. رابعہ بصریہ نے خواب دیکھا, خواب میں اللہ کو دیکھا, کل ہی سبق میں گزرا, پرسو بخاری شریف کے تفسیر میں, اور کہا اللہ معاف کیجئے, میرے دل میں نبی کی محبت تم سے زیادہ ہے. کیا کہا, میرے دل میں نبی کی محبت تم سے زیادہ ہے. تو اللہ نے فرمایا رابعہ, نبی کی محبت بھی میری ہی محبت ہے. اگر نبی سے محبت کی ہے تو یقیناً تمہارے دل میں اللہ کی محبت آئی گئی ہے. اس لیے اللہ خود کہہ رہا ہے, تم چاہتے ہو میں تم سے محبت کرو, میرے نبی کی محبت کرو. اور جب نبی سے محبت ہوگی نا, تو پھر نبی کے ہر کام کو کرے گی. رابعہ بصریہ خود کہتی, اس لیے اس صحابی سے کہا. تو اللہ کو دنیا کی محبت ہو تو پتا چلتی جب نماز کا ٹائم آتا ہے کہ اللہ کی بندی جلدی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے, پھر آخر میں پڑھتی ہے, ٹھونگے مارتی ہے,
इंसान ठोंगे भी मारते जल्दी जल्दी खत्म,
और उसके पास टाइम भी नहीं है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकबर पढ़ने का भी। जो हदीस में आता है, अरे वो क्या तुम पैसे 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 करते हो। एक आदमी मेरे पास आया, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, और उसने कहा हजरत जेब में पैसे ही नहीं रहते हैं। अरे मैंने कहा मैं कहूंगा सबको ना तो भी सारे मेरे पास पैसे लेकर आएंगे, मैं सबका ही ले लूंगा, पैसे ही नहीं रहते। वो एक पाउंड लेकर आया, क्योंकि तो पाउंड है जरा, तो मैंने पाउंड को दम कर दिया। मैंने कहा चलो यार अपने जेब में रखना, अपने बटुए में रखना, शायद कुछ बरकत हो जाए। तो उसके 15 दिन के बाद आए, कहा तो उसमें से पैसे ही खत्म नहीं होते हैं, पैसे बढ़ते ही रहते हैं। ये तो सूरह कौसर मैंने पढ़ के दम कर दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बी को वनहर, बरकत के लिए बहुत अच्छी सूरत है, 21 बार मैंने पढ़ा। मैंने कहा 7 दिन इस पर दम करते रहना, ये पैसा है ना पाउंड, उस पर 7 दिन उसको इस्तेमाल नहीं करना, 7 दिन दम करो, अंडर रख दो, 7 दिन दम करो, इंशाल्लाह पक बरकत देगा। लेकिन उसके साथ साथ नमाज भी पढ़ो, ऐसा थोड़ा है कि वह पैसे दम कराते रहो और बरकत होती रहे और अल्लाह को भूल जाओ, ऐसा नहीं, समझना ही बात। अब वो सहाबी जो है वो आए अल्लाह के रसूल, 2 बार नमाज पढ़ कर आ, भागो यहां से, जाओ नमाज पढ़ो, 2 बार पढ़ो, हो जाए वापस, दूसरी बार पढ़ी, फिर वैसी पढ़ी, उठोंगे मारने वाले जल्दी जल्दी, वह वापस आए अल्लाह के रसूल, वापस जाओ, नहीं पढ़ी बराबर, इस्लाह हो रही है बराबर से। और हमारे यहां तो मुरीद साहब की इस्लाह होती है कुछ भी नहीं, जो जितना ज्यादा बर्फी लाए स्वीट लाए उसको छिजा हो करता रहे, जो करना है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उसकी इस्लाह ही नहीं होती, समझाई बात। बस वो तीसरी बार आया अल्लाह के नबी मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रई तुमुनी उसली, तुम नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, तुम्हारी मत चलाओ, तुम्हारी मत चलाओ, मैं इमाम हूं और पूरी जिंदगी हर काम में नबी की चलाओ, अपनी नहीं, मेरे नबी ने इस काम में क्या किया। इसीलिए उलमा कहते हैं तुम अपने नवासे और पोते को या अपने बेटे और बेटी को किस करो, उससे पहले एक सेकंड के लिए दिमाग में सोच लो कि मेरा नबी जिन्होंने अपने हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अनुमा को और अपनी बेटी फातिमा को और अपनी बेटियों को किस किया था, और उसी सुन्नत को अदा करने के लिए मैं किस कर रहा हूं, किस भी हो गया 100 शहीद का सवाब भी मिल गया। बस एक सेकंड लगती है सोचना है सिर्फ कि मेरे नबी की सुन्नत है। खाने के लिए हाथ धोना है, हाथ धोना है, और उसके सोच रहे हैं कि मेरे नबी ने खाने से पहले हाथ धोने का हुक्म दिया, उन्होंने भी धोया हम भी धोते हैं, खाने के से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया उन्होंने पढ़ा हम भी पढ़ते हैं, खाने के बाद हाथ धोने का हुक्म दिया और दुआ पढ़ने का हमने भी हाथ धोया और दुआ पढ़ी, वल्लाही याद रखो कितना ही कर्जा होगा अल्लाह पाक आसानी से अदा करवाएगा। इस सुन्नत के करने के तरीके हैं, इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा, कोई भी काम नबी की सुन्नत के बगैर मकबूल नहीं है, याद रखो कोई भी काम। जैसे अगर कोई आदमी भाई कोई ड्रेस मेकर हो ना, उसके पास चला जाऊं मैं और करता हूं मैं, अर्जाल जब हज में जाता हूं, मैंने कहा चलो यार, बोलते तुम्हारा मेजरमेंट कर, मेरा नहीं, मेरा जो कुर्ता जो मुझे पसंद है जो बराबर उसका लेकर आता हूं मैं, वैसा ही बनाना, न बहुत क्या बोलते हैं ज्यादा मोटा बनाना और न बहुत लंबा बनाना, और आई बात समझ में, तो बस उसी का मेजरमेंट भी लेता है फिर अपना भी लेता है। अब आप दोबारा चले गए तो देखा तो दो अहमद उसके अंदर में आ जाए, इतना पूरा कर दिया और इतना मोटा कर दिया है? और लंबा भी इतना के सारी जमीन चीरता हुआ चला जा रहा है, तो फिर आप उसको पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। मेरे नबी ने कुरान में यही कहा है कि तुम इतने मोटी सुन्नत अपनी तरफ से ना बनाओ, नबी के काम को इतने मोटे भी ना बनाओ, इतने लंबे भी ना बनाओ, नकद खान रकुम फी रसूलिल्लाह उस्वा सिंपल। मैंने तुम्हारे लिए, जैसे तुम अपने कपड़ों में अपने घर में डिजाइन देखते हो फिर बनाते हो, अपनी हर चीज डिजाइन से बनाते हो, देख देख कर बनाते। एक अल्लाह की जात है जिसने आसमान को, जमीन को, पहाड़ों को बगैर डिजाइन यानी किसी चीज को देखे बगैर बनाया है। हमारा मकान, हमारी टॉयलेट, हमारा बाथरूम, हमारी कोई चीज बनानी होती है तो उसका सैंपल होता है कि इस तरीके से बनाना है, है? उसका क्या करता है, नक्शा होता है इस तरीके से करना है। लेकिन अगर कोई जात है जिनके बारे में अल्लाह ने कहा तुम्हारी जिंदगी कामयाबी का जरिया एक ही है कि उसका नमूना मेरे नबी की जिंदगी की तरह होगा तो कामयाब हो जाए। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, खूबसूरत सैंपल है मेरा नबी, उनकी हर जिंदगी अपने अंदर में ले आओ तो तुम कामयाब हो जाओगे, वरना तुम कामयाब नहीं होंगे। समझ में बात आ रही है? ये तो अभी देखो रबी लोगों भी खत्म हो रहा है ना, लेकिन हमने कितनी सुन्नत को अपनी जिंदगी में शुरू कर दी, कितने हर जगह दुनिया में रबी अव्वल में सुन्नत नबी की मोहब्बत, शान मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, विलादत मुस्तफा, फुला मुस्तफा सब हो रहा है, लेकिन कौन है जो उस पर अमल कर रहा है? इतने बयान, अभी पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया चले जाओ, बांग्लादेश, तो भी इसी पर बयान होते हैं। ओ चिल्ला चिल्ला कर पूरी पूरी रात बयान होता है, लेकिन सुबह उठो तो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ता। अब क्या सुना? इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीजें हिदायत के लिए काफी है, दो चीजें हिदायत के लिए काफी है पूरी जिंदगी में, वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत्ता इमाम मालिक की हदीस है, तरक्तु फीकुम अम्रैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल से पहले फरमाया, ओ मेरे साहबा, ओ मैंने तुम्हारे अंदर दो चीज हिदायत की छोड़ के जा रहा हूं, दो चीजें हिदायत की छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो कभी लन तदिलू नेवर एवर कहते हैं इंग्लिश में, कभी भी एक तो चांस है घूमना, कभी भी नहीं होंगे। और वो क्या है? फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नती, किताबुल्लाह एक तो अल्लाह का कुरान है और एक मेरी सुन्नत है, बस ये दो चीज है, तुम उसका फॉलो करोगे ना कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। ये हैं, एक हदीस में क्या फरमाया, मन अहब सुन्नती या मन तमस्सक बिसुन्नती, मिश्का शरीफ की हदीस है, जिसने मेरी सुन्नत को पकड़ा, ये तो पकड़ा की नहीं है, तमस्क का माना प्रैक्टिस की, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, सुन्नत समझकर अमल किया, इंद फसाद उम्मती, मेरी उम्मत के करप्शन प्रॉब्लम्स के वक्त को देखो ना कितने हैं, आज कोई सुन्नत जानता ही नहीं कितने, फलहू अजरु मिअति शहीद, उसको 100 शहीद का सवाब मिलेगा इस जमाने में। समझ में बात आ रही है? इसलिए सुन्नत नबवी ये नूह अलैहि सलाम की कश्ती की तरह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये उन्होंने बयान किया है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने जो सबसे पहले मुहद्दिस थे, बुखारी से भी पहले उन्होंने किताब लिखी है, इमाम बुखारी से भी पहले, वो जो है फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। क्या मतलब? जो कश्ती में बैठ गया वो फ्लड के तूफान से बच गया, डूबने से बच गया। ये है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कश्ती में बैठ गया वो जमानों के फितनों से बच गया। सही क्या? जो फितने हो रहे हैं ना आजकल, भाई मेरे बच्चे के लिए दुआ करो कहीं फंस नहीं जाए, कभी ड्रग्स में ना लग जाए, कभी इसमें ना लग जाए, कभी इसमें,
उन बच्चों को सुन्नत का आदि बनाओ, बस एक एक थोड़ी थोड़ी सुन्नत के अंदर बच्चे को टोका करो, बैठ के पानी पियो भाई, बैठ के पानी पियो। छोटा बच्चा भाई खड़े होकर पिएगा, पेट पे दर्द होगा, बैठ के पियो, नुकसान बताऊं उसको, बहुत जरूरी है। इस तरीके से सबसे बड़ी करामत इस दुनिया में हवाओं में उड़ना नहीं है, पानी पर चलना नहीं है, पहाड़ों पर चढ़ना नहीं है, सबसे बड़ी करामत ये जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, 10 साल उनके सोबत में रहा, 10 साल, एक साल नहीं, खाली जुम्मा तो जुम्मा नहीं, 10 साल उनके पास रहा, आता जाता हर मजलिस में रहा, कहने लगा हजरत इजाजत दीजिए मैं चला जाऊं। अरे भाई क्यों चला जा रहा है? कहा मैं तो इस नीयत से आया था कि हजरत आपकी कोई करामत देखो, आप तो हवा में उड़ते नहीं, जुनैद बगदादी को कह रहा, आप तो पानी पर चलते नहीं, मैंने तो बहुत सो को देखा जो हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे जा रहा ऊपर नीचे आ रहा। के जमाने में एक जोगी था ना, उसका काम यही था, हर साल में एक मरतबा आता था वो मुसलमान गांव में, और क्या करता था, खुद हवा में ऐसा जाता था, तो लोग उसको देखकर जोगी पर ईमान लाने लगे, मुर्तब बनने लगे, इस्लाम को छोड़ने लगे। यार ये तो है करामत। आजकल तमाशा देखने वाले ज्यादा होते हैं, अच्छे काम में लोग कम होते, लेकिन तमाशा में लोग ज्यादा होते हैं, जहां तमाशा हो ना वहां लोग ज्यादा होते हैं, पूरा शहर आ जाता था, दूर दूर से लोग आते थे, यार आज तो साल में एक बार हमारे जोगी साहब किधर जाएंगे ऊपर हवा में, तो उनको देख जब नीचे आता था सारे उसके हाथ को चूमते और उस पर ईमान ले आते, भाई जोगी साहब तुम्हारा ही दीन सही है, हमारा इस्लाम से भी बेहतर है, हमारा तो कोई मौलवी ऐसा नहीं जो ऐसी करामत दिखाए, हमारे पास तो कोई ऐसा जोगी किया बाबा साहब नहीं है जो हवा में उड़े और फिर ये करामत दिखाए। तो बाज मुरीदीन हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस की कब्र है आज भी वहां पर, उनकी कब्र पर भी खुराफात शुरू हो गई, चादर चढ़ाना और वहां क्या क्या हो रहा है, वहां भी कव्वालियां हो रही है, और क्या वो जिंदा थे, कहा आप सब जोगी साहब आ जाए ना तो मुझे बुला लेना, मैं भी उसके साथ उड़ूंगा। लोगों का ईमान हजरत, लोगों का ईमान खराब हो रहा है, लोगों का ईमान खराब हो रहा है, आप आइए वहां लोगों को बचाइए, लोगों के ईमान को बचाइए। तो ठीक है जब वो आ जाए दूसरी बार तो मुझे बुला लेना। शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह वो ये आया साल में एक बार फिर, और ऐसे जैसे, और ऊपर खाली गया नहीं, वहां दरमियान में बैठा रहता है, हवा में बैठता है बस, यही लोगों की आंखों में जादू कर देते और लोगों के ईमान को खराब करते बैठा रहा। अच्छे अच्छे ईमान वाले भी ईमान छोड़ने लगे, गुमराह होने लगे। हजरत को बुलाया गया, हजरत वो तो ऊपर गया, वो आधा घंटा वहां बैठेगा ना, बैठने में आ रहा हूं। हजरत आए, हाँ सही है यार, तो वो ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया, तो हजरत को देखकर और ऊपर जाने लगा ताकि हजरत भी मेरे मुरीद हो जाए। बात समझ आई? हजरत का ठीक है, अपना जूटा निकाला और जूटे से कहा इसको नीचे ला, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? जूटा जा उसको नीचे ला। हजरत ने जूटा ऐसा फेंका, वो गया मारा उसको नीचे ले आया। अरे भाई ये तो जोगी जाता है, मेरा तो जूटा भी जाता है। वो सारे नारे तकबीर कहने लगे, सबके ईमान को बचाया। मैंने कहा ये सच है ये झूठ है? हमारा तो झूठा भी मानता है, क्यों? हम नबी की मानते हैं, जो नबी का माने सारी चीज उसकी हो जाती है। अल्लाह ने कुरान में कहा, मन हदीस में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का बन जाता है तो अल्लाह भी उसका बन जाता है। ये तो जुनैद बगदादी 10 साल, हजरत तुम तो उड़ते नहीं, मैं तो देखने के लिए आया था,
अरे तेरा सत्यानाश हो, 10 साल तेरे बर्बाद हो गए, तू ये बस देखने के लिए आया था, काश के तू और चीज मेरी देखता, बस सिर्फ यही, न मेरी नमाज देखता, मेरे रोजे देखता, मेरा जिक्र देखता, मेरी तिलावत देखता, यही। पर हजरत कोई कष्ट भी आपको होता नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं होता कि मैं बाहर से कुछ चाय पीकर आया हूं, तो बताते भी नहीं कि आप चाय पीकर आए, कोई कष्ट भी नहीं होता आपको। आज कष्ट वाले को ज्यादा मानते हैं, नहीं हजरत को कष्ट होता है, हजरत को क्या होता है, कष्ट होता है। तो फिर यहां तो मैंने आपके दरबार में, दरबार कह दो, आपके दरबार में, आपकी खानकाह में मैंने 10 साल रहा, कोई करामत नहीं देखी हजरत। अरे जुनैद बगदादी भी जुनैद बगदादी थे भाई। तो जुनैद बगदादी ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुमने ये 10 साल मेरे पास रहे, तुम मेरा कोई भी काम सुन्नत के खिलाफ देखा, सुन्नत के खिलाफ देखा? उसने कहा नहीं, एक भी नहीं, हर सुन्नत पर। फरमा उससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है, सबसे बड़ी करामत कि 10 साल में अल्लाह ने मुझे अपने नबी की हर सुन्नत पर अमल करने का, अमल करने की तौफीक अता फरमाई। इसीलिए बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं 20 साल तक अपने नफ्स के खिलाफ मैंने मुजाहिदा किया। नफ्स कहता है मुझे ये खाना है अच्छा पसंद है, मैंने कहा नहीं नहीं खिलाऊंगा, अभी सोना उस वक्त नहीं, अभी नहीं सोऊंगा, अपने नफ्स के खिलाफ हर काम। लेकिन मैंने देखा 20 साल तक नफ्स के खिलाफ काम किया, मुझे वो फायदा नहीं हुआ जो फायदा मैंने नबी की एक सुन्नत पर अमल करने से हो गया। एक सुन्नत पर, एक मिसवाक वाली सुन्नत हजारों करामतों से बेहतर है। ये अल्लाह ने खुद फरमाया है। इसीलिए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिस्सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफली इबादतें लोग करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक करना, ये कोई मुश्किल नहीं है, उठ गया भाई चलो 4 रकात पढ़ ली, फजर के बाद सनराइज के बाद पढ़ ली, अपनी बात, मस्जिद में आ गया 2 रकात पढ़ ली, नफ्स उससे चढ़ा, क्या होता है पलटा है, ग्रो अप होता है, लेकिन ब्यूटीफाइड नहीं होता, संवरता नहीं है। एक तो है ब्यूटी करना और एक है उसको बड़ा करना, एक है मोटा करना पतला करना और एक है उसको खूबसूरत बनाना, दो चीज है। तो अगर कोई नफल काम करता है तो उससे नफ्स संवरता नहीं है, खूबसूरत नहीं बनता, हाँ पलटा जरूर है। माशाल्लाह मैंने आज तो तहज्जुद पढ़ ली, आज मैंने की शराब पढ़ ली, आज नफ्स फुलटा है जी। लेकिन उस नफ्स के लिए सबसे बड़ा मुजाहिदा अगर कोई है तो नफल काम नहीं है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना यह नफ्स के लिए बहुत बड़ा मुजाहिदा है। इसलिए कि एक एक सुन्नत पर आपका दर्जा बहुत बड़ा होता है, 100 शहीद 100 शहीद 100 शहीद, इसलिए शैतान सुन्नत के मुताबिक अमल करने देता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हम जैसे टॉयलेट में दाखिल हुए, अरे दुआ भूल गया, वापस बाहर आ जा, और फिर दुआ पर बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबुज, फिर लेफ्ट, तो एक बार तुम करोगे दूसरी बार ऑटोमेटिक याद आ जाएगा तुमने शैतान के खिलाफ किए। सही कह रहा हूं, करके देखिए, कोई भी एक सुन्नत छूट जाए फौरन उसको रिपीट करो। तो उन्होंने लिखा है दोपहर में कैलोला 5-10 मिनट आंख बंद कर लेना, दोपहर में, फरमाया 1000 या बल्कि करोड़ का जिक्र है, करोड़ नफली रकात से बेहतर है। जिंदल फसानी कहते क्या अजीब अल्फाज है, क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5-10 मिनट आधे घंटे के लिए थोड़ा आराम करते थे, तो आपने क्या किया, सुन्नत अदा की। अभी सुन्नत का दर्जा वो तुमने अपनी तरफ से करोड़ नफले पढ़ी है ना, वो अपनी तरफ से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नफले पढ़ते रहो, लेकिन सुन्नत का कहा आपने सुन्नत पर अमल किया तो वो करोड़ों नफल से बेहतर है जो सुन्नत है। हां इसलिए
इत्तेबाए सुन्नत बहुत जरूरी है। टाइम नहीं वरना मैं डिटेल में जाता कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन वो नाम के मुसलमान है, मर्द हो या औरत जी। लेकिन याद रखो, अगर मां के पास बेटे का फोटो हो, उसने कार्ड बनाने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए बनवाया था, तो एक फालतू था, चार में से पांच, भाई पासपोर्ट में मैंने तीन चाहिए था, एक बच गया, चार है ना। अब मां के पास है, अब मां को कहें आप ऐसा करो, एक ज्यादा है, आग में जला दो, वो मां अपने बच्चे का फोटो भी जलाने के लिए तैयार नहीं होगी। क्यों नहीं डालती भाई आग में, क्या हुआ तुझे? मैं क्यों डालूं मेरे बेटे का फोटो, बेटे को नहीं, बेटे का फोटो आग में क्यों डालूं? अगर एक मां अपने बेटे की तस्वीर को आग में डालना पसंद नहीं करती तो क्या कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे महबूब की तस्वीर को, अपने प्यारे नबी की तस्वीर को जहन्नम में डालना पसंद फरमाएंगे? नहीं। कोई बंदा भी, इकबाल भाई तुम हो या मैं हूं या शाहिद भाई कोई भी हो या दाऊद भाई कोई भी हो, कोई भी बंदा, बस जनरल, कोई भी अल्लाह की बंदी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखने वाला होगा, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तौर तरीक होगा, गोया नबी का फोटो है ये, नबी की कॉपी है ये, भाई नबी का फॉलोवर्स है ये, तो फिर क्या अल्लाह के महबूब की मुशाबहत वाले बंदे को अल्लाह जहन्नम में डालेंगे? नहीं, मेरा नबी की कॉपी है, सुन्नत अदा करके आया है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि अपने हर अमल को सुन्नत के मुताबिक करें। हम इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं, है फरिश्ते आप लोग, इंसान है, लेकिन कोशिश करें, गुनाह हो जाए फौरन तौबा करें और अपनी तरफ से कोशिश में लगे रहें कि जो भी सुन्नत मेरे सामने आ जाए उस सुन्नत को मैं सुन्नत समझ कर करूं। तो फिर क्या होगा जी, कि हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। इसलिए तरक्त फीकुम अमरिन पर मैं बात कर रहा था कि दो चीजें अल्लाह पाक ने हमें दी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है कि भाई देखो ये मेरे नबी के दी हुए दो अमल है, एक कुरान व सुन्नती, और दूसरा क्या है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह उसके ऊपर चलेंगे तो कयामत में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। या अरहमुर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदीअ समावाति वल अर्ज़, اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने के लिए हम जमा हुए हैं, हमारा बैठना और पर्दे में बैठकर, मदरसे में बैठकर सुनने वाली हमारी माँ और बहनों का आना, सुनना, बैठना सब कबूल फरमा। हम सब को तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, लाना सुन्नत समझ कर अमल की तौफीक नसीब फरमा, हमारे दिलों में अपने हबीब की सही मोहब्बत पैदा फरमा ताकि हम हर सुन्नत पर अमल कर सके। ऐ अल्लाह, नबी की सुन्नत में तेरी महबूबियत रखी हुई है, या अल्लाह हम चाहते हैं कि तू हमें पसंद कर ले, हमें अपना महबूब बना ले, तो अल्लाह अपने नबी की सुन्नत पर चलने वालों में से बना दे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने वालों में से बना दे। ऐ अल्लाह हमारा जाहिर भी बना दे, बातिन भी बना दे, ऐ अल्लाह घरों को भी, ऐ अल्लाह नेक और सालिहीन वाला बना दे, हमारे आल औलाद को, हमारे माँ बाप को, भाई बहने को, लाउल आलमीन और सारी उम्मत को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने वालों में से बना दे। ऐ अल्लाह रात के अंधेरे में, दिन के उजालों में, खलवत में, जलवत में, घर में, घर से बाहर, छुप कर, खुल कर, जब कभी जो भी गुनाह हो गया हो, जहाँ कहीं हो, अल्लाह तो अपने फजल से माफ कर दे, अपने फजल से माफ कर दे, जिनको हमने गुनाह समझ कर किया उसे भी माफ कर दे, और जिनको हमने गुनाह ही नहीं समझा है
اور وہ حقیقت میں گناہ ہے, اللہ اسے بھی معاف کر دے. اے اللہ حقوق العباد بھی معاف کروا دے, اے اللہ حقوق اللہ بھی معاف کر دے. اے اللہ دنیا میں, دنیا سے ہم جائیں الہ العالمین تم اسلام پر موت نصیب فرما, توفنا مسلمین نصیب فرما, توفنا مسلمین نصیب فرما, توفنا مسلمین نصیب فرما. ایمان پر باقی رکھنا, ایمان پر موت دینا. یا اکرم الاکرمین نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما, نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما. اے اللہ یا رحمان ذکر کی لذتیں نصیب فرما, قرآن تلاوت میں حلاوت اور سویٹنس نصیب فرما. اے اللہ قرآن کو مزے سے پڑھنے والوں میں سے بنا دے, قرآن کو خوب محبت اور پیار سے پڑھنے والوں میں سے بنا دے, تیرے ہر طریق سے بچنے عمل کرنے والے بنا دے, اور ہر گناہ سے بچنے والوں میں سے بنا دے. الہ العالمین حرام سے ہماری حفاظت فرما, ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. اللہ حلال کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ حلال کھانا نصیب فرما, حلال لباس نصیب فرما, حلال پینا نصیب فرما. یا اللہ ہمیں پتا ہے تیرے نبی نے فرمایا چاہے ہزار حج کر لو, ہزار عمرے کر لو, ہزار تبلیغ جماعت میں چلنے لگا لو, کعبہ کا دیوار پکڑ کر گلاب پکڑ کر دعا کر لو, پھر بھی نہ عمرے قبول ہے نہ عبادت قبول ہے جب تک کہ ہمارا کھانا حلال نہ ہو جائے, ہمارا پینا حلال نہ ہو جائے. اے اللہ ہمارا پہننا حلال نہ ہو جائے. تیرے نبی کا فرمان ہے مطعمہ حرام ملبسہ حرام. اے اللہ مشربہ حرام, تیرے نبی نے فرمایا انا یستجاب لہ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی. اے اللہ ہماری زندگیاں, اے اللہ حلال کام کرنے والی بنا دے, حرام سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے, پریشانیوں سے بچا لے, بیماریوں سے بچا لے, نقصانات سے بچا لے, فتنوں سے بچا لے. اے اللہ, اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لے, دکھ دردوں سے ہماری حفاظت فرما, ڈائبٹیز جیسی بیماری, بلڈ پریشر جیسی بیماری, اور بہت ساری قسم کی بیماریوں سے ہماری, اور خصوصاً کینسر کی بیماری سے, اے اللہ ٹی بی کی بیماری سے ہماری, ہماری آل اولاد کی, ہم سب کی, اے اللہ تو حفاظت فرما اور اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے, اپنے نبی کی بات کے صدقے اور آمین کہنے والوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.